அஜானதிமிரந்த்ரஸ்ய ஜானஞ்சனசலாகய சக்ஷுருனுமிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீகுரவே நமஃ. வஞ்சாகல்பதருபேஷ்ய கிருபாசிந்துப்யைவ ச பதிதானம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமோ. மகாவதன்னாய கிருஷ்ண பிரேம ப்ரதாஜயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைதன்ய நம்னே கௌரத்விஷே. குரவே கௌரச்சந்திராய ராதிகாயை ததாலயை கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய ததபக்தாய நமோ. பக்த்யா விஹீனா பராத லக்ஷ்யை க்ஷிப்த்வாஸ்ய காமாதி தரங்க மத்யை க்ருபாமயீ த்வாம் சரணம் ப்ரபன்னா வ்ருந்தே நமஸ்தே சரணாய. தவைவாஸ்மி ந ஜீவாமி த்வயா வினா இதி விஜ்ஞாய ராதே தன்னய மாம் சரணந்தி. मैं इस शुभ अवसर पर अपने परमाराध्य गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट हूं विष्णुपाद श्रीमद भक्ति प्रज्ञान के सगुरु स्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अपनी अनंत कोटि श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। तत्पश्चात आदरणीय वैष्णवगण, प्रिय आदरणीय सज्जन वर्ग, माताएं और बहनें और बेटियां, यथा योग्य अपना सम्मान आप लोगों को प्रदान करता हूं। आज बड़े खुशी की बात है कि मैं अभी परसों विदेश जा रहा हूं। विशेष करके आजकल सभ्य कहे जाने वाले जितने भी उन्नत राष्ट्र हैं, जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली, हॉलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, इधर ऑस्ट्रेलिया इत्यादि, जापान, यहाँ के लोग भी हमारी भारतीय संस्कृति के विचारों को सुनने के लिए बड़े उत्सुक, बड़े आदर से इसको सुनने के लिए बुला रहे हैं। व्रत छोड़ करके जाने की इच्छा नहीं थी, विशेष करके इस परिणत वृद्धावस्था में, किंतु उन लोगों का इतना आदर, इतना उत्कंठा मुझे जबरदस्ती खींचे ले जा रहा है। केवल हमारे भारतीय प्रवासी ही नहीं, जो भारत के हैं वहां रह गए हैं वो तो है ही हैं, वहां के रहने वाले जो विदेशी भक्त लोग हैं, विदेशी लोग हैं, जो सुख और शांति चाहते हैं, आजकल के भोगों से, ऐश्वर्य से लदे हुए हैं, कहां ये अर्थ रखें, रुपया रखें, उनके पास में जगह नहीं, इन्वेस्ट करें, ऐसे लोग उनसे तंग आकर अब कुछ ऐसे चाहते हैं जिनमें सुख और शांति हो। चारों तरफ थक गए खोजते खोजते, अंत में भारत पर नजर पड़ी। प्राचीन काल से हमारा वैदिक संस्कार विश्व में सबसे समृद्ध और धनी है। यहाँ के लोग जितने बड़े बड़े ऋषि महर्षि सब हो गए हैं, उनको देखिए उनका जीवन कैसा। जंगलों में यदि विवाहित भी हैं, वशिष्ठ जी, उनकी पत्नी अरुंधति जी, कश्यप जी, अदिति जी, हमारे रामायण के समय के बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग गृहस्थ भी थे, त्यागी भी थे, किंतु सब में किसी में भी सांसारिक भोगों के प्रति मोह नहीं था। और ऐसे ऐसे उन्होंने तपस्या की जो विश्व को उन्होंने अपने ज्ञान दे करके सबको कृतार्थ कर दिया। आज देख रहे हैं हम विश्व में बड़े बड़े राष्ट्र धनी धनी हैं, बड़े बड़े धनी लोग हैं, कोई भी अपनी परिस्थिति से सुखी नहीं है, सभी लोग उसी में बड़े दुखी हैं। हम तो छोटे से बड़े से गरीब से भी बड़े बड़े धनी लोगों से भी समृद्ध लोगों से भी सभी लोग हमारे पास में आते हैं। लड़कियां भी बिना हिचक के हमारे हमसे मिलती हैं, अपने दुखों को बतलाती हैं। विशेष करके इस सबका शास्त्रों में वर्णन है, इसीलिए वो उत्कंठित होकर के हमें बुलाते हैं। मैंने पहले भाषण में एक बार दिया था इंग्लैंड में, मैं हमारे भारतवर्ष के आज के आधुनिक राजनीतिज्ञ लोग हैं, वो हाथ पसारने के लिए कुछ पैसे मांगने के लिए इसके लिए आते हैं, मैं उसके लिए नहीं आया। मैं उस समृद्ध भारत से आया हूं जो कि विश्व का सब समय गुरु रहा है। मैं जो देने के लिए आप लोगों को आया हूं उसमें थोड़ा सा भी यदि आप लोगों ने ग्रहण कर लिया, आपका जीवन सुखी और शांति हो जाएगा। मैं उस चीज को देने के लिए आया, आपके अर्थ की हमें लालसा नहीं, वो आपके पास में रहे। सुनकर के उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन लोगों ने सोचा था ये भी कुछ पैसे के लिए, अर्थ के लिए आए होंगे, और मैंने छुआ तक भी नहीं उनको, इसलिए उनकी हमारे प्रति बहुत काफी श्रद्धा बढ़ गई, बड़े प्रेम से सुनने लगे हमारे बातों। तो आज मैं परसों जाने वाला हूं, आज मैं यहां पर, आप लोगों ने बहुत ही सुंदर व्यवस्था की, और जाने के पहले आप लोगों से मिल करके बहुत प्रसन्न हुआ। आज का विषय गीता का विचार रखा गया है। गीता हमारे वैदिक साहित्य का एक अनमोल रत्न है। सर्व उपनिषदो गावु दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो सुधी भोक्ता गीतामृतम महत। उपनिषद वह विद्या है जो हमको ये बतलाती है कि मैं शरीर नहीं हूं। अधिकांश लोग यही समझते हैं पशुओं जैसा, मैं यह शरीर हूं। शरीर का भोग ही, उसी को एकत्रित करना हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है। उपनिषद ये बतलाती है, वह विद्या है ऊपर निकट में भगवान के समीप जो विद्या ले जाती है, जन्म मरण के दुखों से, सांसारिक क्लेशों से सदा के लिए उसे ऊपर उठा देती है, जीवन को शांति और सुखपूर्ण बना देती है। उस विद्या का नाम उपनिषद। उपनिषद और वेद साहित्य इतने विपुल हैं, अनंत हैं, उनका विचार इतना गंभीर है, भाषा इतनी क्लिष्ट है, दर्शन के विचार उसमें इतने प्रौढ़ हैं कि साधारण लोगों के लिए उसको समझना बड़ा भारी कठिन है, बहुत कठिन। किंतु भगवान कृष्ण ने उन उपनिषदों का सार सरल सहल भाषा में, बोधगम्य भाषा में, गागर में, सागर की तरफ में उसमें भर दिया है। यदि और किसी भी शास्त्र को न छुए गीता के केवल एक दो उपदेश को ही अपने जीवन में ग्रहण कर लें तो हमारा जीवन शांति और सुखमय हो सकता है। इसलिए समस्त उपनिषदों का सार इस गीता में है, किंतु इसमें एक विचार है। गीता के पाठक पढ़ने वाले जो हैं, इनका जो अनुशीलन करते हैं या उनके सुनते हैं उनको, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो गीता के विचारों का स्थूल और ऊपरी अर्थ केवल लेकर के संतुष्ट हो जाते हैं, और दूसरे हैं जो कुछ गंभीर विचार वाले हैं, बुद्धिमान हैं, उसके स्थूल अर्थ से प्रसन्न नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते, उसके विचारों के गहन गहराई में पहुंचकर उसका उद्देश्य क्या है इसको समझने की चेष्टा करते हैं। इसमें जो स्थूल दर्शी हैं, जो ऊपर के बाहरी को अर्थ को लेकर के संतुष्ट हो जाते हैं, उनका यह विचार है जो गीता कर्म योग की शिक्षा देती है, एक हाथ में अस्त्र लेकर के लड़ो और दूसरे अर्थ में दूसरे में हमारा स्मरण करो। बिन इस जगत में कोई भी ऐसा नहीं है जो कर्म किए बिना रह सकता हो, इसलिए गीता कर्म करने की शिक्षा देती है। किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उसकी गहराई तक प्रवेश करके उसमें विचार में ये जाते हैं, गीता का उद्देश्य युद्ध कराना नहीं था। अधिकारियों के अनुसार में विभिन्न प्रकार के अधिकारी हैं, उनके अधिकार के अनुसार में उसको उनमें आत्मज्ञान दिया जाए, धर्म क्या चीज है, आत्मधर्म क्या चीज है, हम हैं क्या आखिर, ये जगत क्या है, जगत के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, जगत का कर्तव्य रहने पर भी भगवान सत्य हैं या नहीं है, ये पीछे का विचार। किंतु मृत्यु एक ऐसी चीज है जो परम सत्य है, इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, अस्वीकार नहीं कर सकता। दूसरी बात, एक चीज और भी है जिसको हम अस्वीकार नहीं कर सकते, बुढ़ापा जरूर आएगी यदि मर नहीं गए बीच में, और जीवन में तरह तरह के की समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, रोग है, अस्वस्थता है, पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा है, इसलिए जगत में तरह तरह के दुख भी हैं, इसको भी कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। सभी लोग सुख चाहते हैं, किंतु बुढ़ापा आएगी, दांत टूटेंगे, आंखें कमजोर होंगी, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसकी जिसका जन्म है जातस्य, मृत्यु अवश्यंभावी है, ये सत्य है। इसलिए हम कौन हैं, हमारा क्या कर्तव्य है, कहां से आए हैं, दुख क्यों मिल रहा है, बुद्धिमान मनुष्य इसके लिए चिंता करेगा, विचार करेगा। जो नहीं करता वो पशु है, पशु खाते पीते मरते हैं। मैंने देखा एक समय 20-25 गायें और 50-60 भैंस बूढ़े, और उनको एक कसाई लेकर के आ रहे हैं, कलकत्ता में बदगृह है, उनके सामने खड़ा कर दिए और बारी बारी से उन्हें लेकर के काट रहे हैं। जानवरों में थोड़ा सा ये घास हरी से दे दिया, अब वो पशु परस्पर लड़ रहे हैं उस घास के लिए, किंतु ये नहीं जानते हैं कि अभी हमें जाना पड़ेगा और हमें काट डालेंगे, नहीं समझते। ऐसे हम हैं, संसार के लोग जो जन्मे हैं वो मर रहे हैं, जो बूढ़े जो जवान हैं वो बूढ़े हो रहे हैं, जो बच्चे हैं वो नौजवान हो रहे हैं, किंतु हम नहीं जानते हैं ये कब किसकी कैसी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए गीता की पृष्ठभूमि में हम जब चलते हैं तो देखते हैं कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ और कैसे इस शिक्षा को अर्जुन को कृष्ण ने दी। पहले देखिए पांडव लोग और कौरव लोग दोनों भाई हैं, चचे। कौरव लोग छल से पांडवों को आधा राज्य नहीं देना चाहते। यों तो पांडवों का अधिकार है संपूर्ण राज्य पर, क्योंकि उनके पिता राजा थे, किंतु पिताजी के मर जाने के बाद में धृतराष्ट्र को गद्दी दी गई संभालने के लिए बच्चों को। इसके बाद में जब बड़े हो गए, सब लोगों ने निर्णय किया कि इनका आधा राज्य दे दिया जाए। पांडव लोग इसमें संतुष्ट हैं, किंतु दुर्योधन इसमें संतुष्ट नहीं, उसके भाई लोग संतुष्ट नहीं, धृतराष्ट्र भी संतुष्ट नहीं। पांडव लोग यहां तक कहा जी हमको 5 ग्राम केवल छोटे से दे दिए जाए तो भी संतुष्ट है, हम लोग लड़ाई नहीं चाहते। और दुर्योधन क्या कहता है, सुई की नोक भर भी कोई राज्य का कोई हिस्सा हम नहीं देना चाहते। दूसरी तरफ में देखिए उस समय में धर्म की कितनी ग्लानि हो गई है इसको समझिए। कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि मैं धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होता, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सिजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। मैं असुरों को दमन कर शिष्ट और साधुओं की रक्षा के लिए जगत में आता हूं, इसके द्वारा धर्म की प्रतिष्ठा करता हूं। जब जब धर्म की हानि होती है और असुर लोग बढ़ते हैं और उनका आसुरिक विचार जगत में जब भर जाता है, उस समय में आकर के धर्म की ग्लानि को दूर करता हूं। किस धर्म के लिए, किस धर्म को की प्रतिष्ठा करने के लिए भगवान आते हैं? देखिए महाभारत युद्ध के पहले परशुराम जी हो गए, उनके पिताजी जब जमदग्नि थे, जमदग्नि तपस्या कर रहे थे और सहस्त्र अर्जुन क्षत्रिय था, बड़ा अभिमानी बड़ा बलवान था, ब्रह्मा जी से उसको वर मिल चुका था। वो सोचता था जी ये शरीर ही मैं हूं, ब्रह्म ज्ञान इत्यादि कुछ नहीं बेकार का है। ब्राह्मणों से उसकी ईर्ष्या हो गई, कौन ब्राह्मणों से, जो तत्ववादी साधारण। और उस समय के ब्राह्मण भी ऐसे हो गए थे जो ज्ञान में तत्व में नहीं पारदर्शी रह करके भगवान का भजन नहीं करते थे, आत्मज्ञान नहीं था, केवल ब्राह्मण का पुत्र ही ब्राह्मण होगा ऐसी भावना थी। इसलिए धर्म कर्म से वो भी रही। कुछ कुछ लोग थे बहुत दुर्लभ जो तत्व ज्ञान को जानने वाले, ब्रह्म तत्व को जानने वाले ब्राह्मण, इसलिए दोनों में ठन गई। परशुराम जी ने ऐसे क्षत्रियों को कितनी बार, 21 बार काट डाला, जो गर्भ में थे केवल वही रह गए। अब उसी समय में विरोध चला, विरोध था इस बात का, कुछ ये चाहते हैं मैं शरीर हूं, शरीर के भोगों के लिए ये पृथ्वी बनी हुई है, हमारा भोग ही सर्वत्र हमको चाहिए, भोग के लिए ही अपने को क्षत्रिय मानना, ब्राह्मण मानना, वैश्य मानना, ये शरीर को आत्मज्ञान से शून्य होकर ऐसे लोगों के लिए सभी जितना ये विश्व बना है उनके भोग के लिए मानव बना हुआ है। किंतु बात ऐसी नहीं है, जितने जीव हैं
विश्व में सभी कृष्ण के दास दास हैं। ममई वांसो जीवलोके जीव भूता सनातन गीता ये कहते हैं। कृष्ण ही एकमात्र सबके सृष्टि करने वाले, पालन करने वाले, सब कुछ करने वाले, वही समस्त ईश्वरों के ईश्वर हैं। और जीव उनका अविनाशी तत्व है जो उनका सेवक तत्व है। इसको भूल जाने से तब आता है कि मैं शरीर हूं, मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं, बौद्ध हूं, ईसाई हूं, क्रिश्चियन हूं, ये सब भावनाएं आती।